हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 मई 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि 9 मई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। इतिहास के पन्नों में आज की तारीख 11 मई भारत की तकनीक के लिए बहुत ही खास तारीख है। भारत की वैज्ञानिक ताकत और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रतीक के रूप में आज का दिन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन राजस्थान के पोखरण में भारत ने सफल परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था 1998 में। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। हालांकि राजस्थान, गुजरात इन राज्यों में लू का कहर भी देखने को मिलेगा। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और खबर है, बिहार के पटना हाईकोर्ट के वकील आज 11 मई को कार्य से बहिष्कार करेंगे। कुछ जजों पर अदालत में अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया है। वहीं जनगणना 2027 को लेकर जागरूकता अभियान शुरू होगा। आज 11 मई को हैदराबाद के नेकलेस रोड पर निकलेगी विशाल पदयात्रा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 मई को गुजरात के सोमनाथ जाएंगे। इससे पहले उन्होंने एक भावुक लेख भी साझा किया और पीएम के इस गुजरात दौरे को लेकर गुजरात सरकार ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। वहीं हरियाणा सरकार भी आज 11 मई को मनाएगी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया, देश की आत्मा से जुड़ा जीवंत तीर्थ। और राजधानी दिल्ली के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान हो चुका है। आज 11 मई से लेकर अब 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। समर वेकेशन शुरू होने जा रही आज से ही। 9वीं 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्पेशल रेमेडियल क्लासेज भी लगेगी इस दरमियान। वहीं तेलंगाना सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब आज से 99 दिनों तक चलेगा प्रजा पालन अभियान। 11 से 17 मई तक शिक्षा सप्ताह चलेगा और इसी के तहत प्रजा पालन अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं आज 11 मई को CBSE के 12वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, तो स्टूडेंट CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर या डिजी लॉकर ऐप पर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 12वीं के विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों सब्जेक्ट के परिणाम आज ही जारी कर दिए जाएंगे। वहीं आज 11 मई को JEE एडवांस के एडमिट कार्ड भी जारी होंगे। और बिहार में देखिए, 86 दिन बाद खत्म हुई राजस्व कर्मियों की हड़ताल। अब आज 11 मई से शुरू होगा दाखिल, खारिज व अन्य काम भी। तो ये तो आज के कुछ बड़े इवेंट रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, ईरान अमेरिका इसराइल जंग पर बड़ी खबर आ रही कि पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने ईरानी सेना को नए निर्देश दिए। IRGC ने भी कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है अमेरिका और इसराइल को। तो ऐसे में इन बढ़ते जंग के हालातों के बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को संबोधित करते हुए कुछ अपील की है। पीएम ने देशवासियों से कहा कि पेट्रोल, गैस और डीजल, इन चीजों का संयम से इस्तेमाल करें, क्योंकि पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच क्रूड ऑयल तेल संकट देखने को मिल रहा। इस बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। भारत में तेल के कुएं नहीं है। आज देश में वर्क फ्रॉम होम की जरूरत है। और पीएम ने देशवासियों से ये भी कहा कि अगले एक साल तक सोना न खरीदें। अब अगले एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील पीएम मोदी ने क्यों की है, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्योंकि सोने के आयात में बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो पीएम मोदी ने देशवासियों से कहा कि देश हित में लोगों को अगले एक साल तक सोना खरीदने और दान करने से बचना चाहिए। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये 5 बड़ी बातें कही है। पेट्रोल डीजल की बचत करें, भारत में कोई तेल के कुएं नहीं है, खाद्य तेल की खपत भी कम करने पर जोर दिया और रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएं। देश के किसानों से भी पीएम ने ये अपील की है। और विदेश यात्राएं भी टालने की अपील की है। वैश्विक हालात और महंगे ईंधन के कारण भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में शादियों, छुट्टियों और अन्य कारणों से विदेश यात्रा कुछ समय के लिए टालना ही देश हित में होगा। देश के नाम प्रधानमंत्री का ये संबोधन वाकई में बहुत ही सीरियस बात है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आज ये संकल्प लेना होगा, अगले एक साल तक कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे शादी ब्याह भी हो, तो भी सोना न खरीदें। इससे हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी। क्योंकि दोस्तों, गोल्ड को लेकर भारत का डेटा देखिए, ग्लोबल डिमांड में भारत की सोने में 26% तक हिस्सेदारी है। भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। पहले नंबर पर चाइना और सेकंड नंबर पर भारत आता है। ये डेटा आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इन युद्ध के हालातों की वजह से हमारे देश की पेट्रोलियम कंपनियों को भी बड़ा घाटा हो रहा है। देखिए आप डेटा, तेल कंपनियों को हर दिन तकरीबन 1700 करोड़ का घाटा हो रहा है। कंपनियों का कहना कि लागत बढ़ी हुई है, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। इस वजह से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ऑन एवरेज हर दिन 1700 करोड़ का नुकसान। पिछले 10 सप्ताह में देश की ऑयल कंपनियों को 1,00,000 करोड़ का घाटा हुआ है। और इसके पीछे वजह यही है कि वैश्विक तनाव के बीच पेट्रोल डीजल के दाम कंपनियों ने नहीं बढ़ाए हैं। इतना ही नहीं, महंगाई का ये असर आने वाले कई लंबे समय तक जारी रह सकता है। कच्चा तेल वगैरह महंगा बना रह सकता है, तो इससे भी भारत की अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। ABD यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। मैंने आपको महंगाई को लेकर दुनिया भर की एक रिपोर्ट बताई थी अभी एक दिन पहले, कल के न्यूज बुलेटिन वाले अपडेट में, कि दुनिया भर में खाने पीने की चीजें 3 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर महंगाई पर चल रही है अभी, क्योंकि अमेरिका ईरान जंग की वजह से सप्लाई चेन टूटने का असर दिख रहा है। और UN यूनाइटेड नेशंस का भी कहना कि अभी तो और दाम बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब, दुनिया भर में महंगाई और चरम पर बढ़ने वाली है। हमारे देश में भी रिपोर्ट आ रही कि साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट समेत रोजमर्रा के कई सामान महंगे होंगे। ब्रिटानिया, डाबर, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर समेत कई सारी एफएमसीजी कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी कर चुकी हैं। तो इस वजह से महंगाई दिनों दिन और बढ़ सकती है। तो हम सभी भारतीयों को मिलकर इन मुश्किल हालातों से लड़ना होगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि जैसे कोरोना काल में हमने वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं अपनाई, मिलकर चुनौतियों का सामना किया, तो देश हित में आवश्यक है कि हम इन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें। ऐसा तो ईरान इजराइल जंग से जुड़े कुछ और अपडेट मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए कुछ पॉलिटिक्स, भारत की राजनीति से जुड़ी खबरें। आखिरकार साउथ के विजय तमिलनाडु में थलापति मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और इस शपथ के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में एक नया ऐतिहासिक परिवर्तन शुरू हो चुका है। विजय तमिलनाडु के 90वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि बीते दिन शपथ लेते दौरान जब वो पॉलिटिकल स्पीच देने लगे तो राज्यपाल ने उनको टोका और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही उन्होंने पहला ऑर्डर 200 यूनिट फ्री बिजली का पास कर दिया है। विजय के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की ये तस्वीरें देखिए आप। कुछ शपथ में उनके माता पिता हाथ जोड़कर बैठे रहे और तमिलनाडु में पहली बार किसी तमिल नेता ने कोट पेंट में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद राहुल गांधी के साथ विजय ने सेल्फी भी ली। ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। हालांकि शपथ लेते ही कुछ विवादों में भी गिर गए विजय, क्योंकि शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने राज्य गान से पहले देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया था, तो इस पर सीपीआई ने आपत्ति जताई। विजय की शपथ में राष्ट्रगान, वंदे मातरम, इनको लेकर विवाद हुआ। डीएमके बोली कि पहले तमिल गीत बजाने की परंपरा है लेकिन इसे तीसरे नंबर पर धकेला गया। इस मुद्दे को लेकर लेफ्ट और वीसीके का भी विरोध देखने को मिला। तो आखिरकार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनते ही विजय ने 200 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाने का ऐलान भी कर दिया है। बाकी और भी दोस्तों, विजय ने मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत बाद क्या क्या बड़े फैसले लिए, इस बारे में अगर आप विस्तार से जानकारी देखना चाहते हो तो डीएलएस न्यूज चैनल पर मैंने कल एक अलग से वीडियो डाला है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा। चलिए अगली खबर है, तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र भी आज 11 मई को आयोजित होगा और फिर तमिलनाडु की राजनीतिक टीम में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 12 मई को होगा कल। मुख्यमंत्री विजय ने सीएम शपथ के बाद ये भी बड़ा ऐलान किया। तो विजय के साथ ही आखिरकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकारें शुरू हो चुकी हैं। इधर असम में खबर आ रही कि हिमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजग विधायक दल के नेता चुने गए और ऐसे में असम में भी हिमंत बिस्व शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह कल 12 मई को होगा। लेकिन केरल की राजनीति में अभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि बीते दिन भी दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर लंबी बैठक हुई लेकिन देखा जाए तो अभी भी केरल राज्य में कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही कि आखिर मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। सीएम पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस ने दावेदारों के पोस्टर हटवाए। दावा किया जा रहा है कि विधायकों का वेणुगोपाल को समर्थन मिला है मुख्यमंत्री के लिए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ नई रिपोर्ट सामने आ रही कि पाकिस्तान ने गुजरात से लेकर कश्मीर तक 900 ड्रोन दागे थे लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का सब तबाह हो गया। पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों देशों की तिकड़ी के चार मंसूबे चौपट हुए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने के मौके पर भारतीय सैन्य बलों की समीक्षा बैठक में कई अहम खुलासे किए गए हैं। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई के दौरान चीन और तुर्की ने भी साथ दिया लेकिन हो कुछ नहीं पाया। तीनों देशों का प्लान भी फेल हो गया और वहीं ये रिपोर्ट सामने आने के बाद पाकिस्तान की भी बौखलाहट देखने को मिली। हार छिपाने के लिए झूठ बोले पाकिस्तान के आसिम मुनीर, ऑपरेशन सिंदूर को बताया दो विचारधाराओं की लड़ाई। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान को लेकर एक खुलासा ये सामने आ रहा कि इस ऑपरेशन में चाइना ने पाकिस्तान को सीधी सीधी मदद दी थी। खुद एक चीनी इंजीनियर ने ये माना कि हमने पाकिस्तान के विमानों को टेक्निकली तैयार किया, रियल टाइम इनपुट दिए, तो चाइना के साथ के बावजूद भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आईएसआई से जुड़े मध्य प्रदेश के तीन युवक गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इनका प्लान था मंदिर, ढाबा और मिलिट्री कैंप उड़ाने वाले थे। इन्होंने इनकी तस्वीरें भी पाकिस्तान भेजी हैं। देखिए भारत में ही रहकर भारत के साथ गद्दारी करते हैं ये, इन देशद्रोहियों को तो सच में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बंगलुरु में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने के मौके पर। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी 9 पहल भी शुरू की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में एक नया कानून लागू हो चुका है। अगर किम जोंग की हत्या हुई तो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर अटैक करेगा। उत्तर कोरिया के संविधान में ही ये नया प्रावधान जोड़ दिया गया है। हाल ही में आपको बताऊंगा अमेरिका के हमले में जो ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत हुई उसके बाद नॉर्थ कोरिया ने अपने संविधान कानून में ये बदलाव किया और बड़ा फैसला लिया है। अगर कोई देश नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनकी हत्या कर देता है या किसी विदेशी हमले के दौरान वे लीडरशिप करने की हालत में भी नहीं रहते हैं तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। उनके देश में ये नया एक्ट लागू हो चुका है। और एक श्रद्धांजलि, कर्नाटक में शोक की लहर देखने को मिली। कैबिनेट मंत्री डी सुधाकर का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि एयर इंडिया में सक्रिय पिछले 3 साल में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी के सीईओ बोले कि अगर नियम तोड़े तो हम बख्शेंगे नहीं। और खबर आ रही झारखंड में पर्यटन को मिलेगा डिजिटल बढ़ावा, जल्द ही लागू होगी इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पॉलिसी। झारखंड सरकार राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह नया सिस्टम लागू करने जा रही है और इससे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी फायदा मिलेगा। देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। और बड़ी खबर देखिए, ड्राइवर और नौकर के नाम पर अगर संपत्ति खरीदी तो भी वो जब्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मामले पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने भ्रष्टाचारियों की, काला धन छिपाने वालों की नींद उड़ा दी है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कई सारे पॉलिटिशियन, राजनेता जो होते हैं अपने नौकर के नाम पर, अपने ड्राइवर के नाम पर संपत्तियां खरीद लेते हैं। कई सारे व्यापारी वगैरह भी ऐसा करते हैं। तो अब उनके नौकर चाकरों के नाम पर खरीदी गई, रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी को भी जब्त किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, हमारे देश में हर 10 में से 4 बच्चे उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आज भी भारतीय स्कूली व्यवस्था को लेकर कमजोर हालातों को दर्शाती है कि कहीं न कहीं एजुकेशन हमारे देश में आज भी उस हद तक महत्वपूर्ण नहीं बन पा रही है। वहीं एक रिपोर्ट ये सामने आ रही कि पिछले साल 2025-26 में मनरेगा कार्य दिवसों में गिरावट देखने को मिली, रोजगार के प्रमुख संकेतकों में भी लगातार कमी दर्ज हुई है। ये डेटा आप देख सकते हैं। और भी चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हंता वायरस से प्रभावित क्रूज स्पेन के टेनेरिफ पहुंच चुका है, यहां अब यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी अपडेट जारी किया गया। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट तो ये आ रही दोस्तों कि हंता वायरस के बाद अब दुनिया में नोरो वायरस फैलने की भी चिंता बढ़ी है। क्योंकि और बीच समुद्र में 2 क्रूज पर दोनों में इस तरह के वायरस फैले हैं, इसके बाद दुनिया भर में डर का माहौल है। हाल ही में एक क्रूज पर हंता वायरस फैला था, उसके बाद अब एक और खबर आ रही कि एक और क्रूज पर नोरो वायरस भी फैल चुका है। और कुछ बड़े क्राइम हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान की यह घटना है, राजस्थान से 900 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर बुलाकर एक गर्लफ्रेंड ने, महिला मित्र ने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी। बचपन के प्रेमी संग मिलकर दूसरे प्रेमी को मार दिया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में यह घटना देखने को मिली है, देखिए आप। और राजस्थान की एक और बड़ी घटना देखिए, एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी और महिला जो चांदी के कड़े वगैरह गहने पहनी थी उनको लूट कर भाग गए। वहीं एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर हरिद्वार जा रही तीर्थयात्रियों की बस सड़क पर पलट गई, 27 लोग इसमें सवार थे। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, कई यात्री घायल हो गए इसमें। वहीं ईरान अमेरिका इजराइल जंग पर बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, हॉर्मुज रूट में फिर से गहरा संकट छाया, पिछले 24 घंटे से एक भी जहाज यहां से नहीं गुजरा। अब संयुक्त राष्ट्र UN में ईरान पर बड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। और एक रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि ईरान ने समुद्र में 3000 बैरल तेल भी बहा दिया। ऑयल स्टोर की जगह कम पड़ रही है तो ईरान ने वो तेल समुद्र में फेंक दिया। हॉर्मुज संकट और अमेरिकी प्रतिबंधों का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इस बीच पश्चिम एशिया संघर्ष में एक नया मोड़ सामने आया, ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब भेजा और पाकिस्तान के जरिए दिल की बात बताई। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान यानी ईरान जो है वो फिलहाल केवल युद्ध विराम और क्षेत्रीय स्थिरता रोकने पर बातचीत करना चाहता है। ये अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा ईरान ने ऐसा। वहीं देखिए UN प्रमुख ने यूक्रेन व रूस के बीच युद्ध विराम और कैदियों के आदान प्रदान का भी स्वागत किया। जल्द ही दोनों देशों के 1000 कैदियों की अदला बदली होगी। और इधर ईरान के IRGC का कहना है कि हमले के लिए हम भी तैयार हैं। US यानी अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम भी यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तीसरे देश में मिलने को तैयार हैं। यानी जैसे ईरान अमेरिका की जंग की बातचीत पाकिस्तान में हो रही है ना, वैसे ही पुतिन का कहना कि रूस यूक्रेन की जंग की बातचीत भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता में हम करने के लिए तैयार हैं। और व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध का अंत अब करीब आ गया है। पुतिन का यह बड़ा बयान देखने को मिला, उन्होंने कहा कि इसके लिए पश्चिमी अभिजात वर्ग जिम्मेदार है। और इधर अमेरिका और ईरान के बीच बहुत कठिन संघर्ष और बढ़ सकता है। पुतिन ने इसको लेकर भी कहा कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं है। एक बड़ा खतरा देखने को मिला, अमेरिका कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों पर साइबर हमला भी हुआ। जब स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा था, ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी, इस बीच बिटकॉइन की फिरौती मांगी गई। 9000 से भी ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों पर यह बड़ा साइबर अटैक हुआ है। दुनिया भर में डर का माहौल बढ़ गया इस घटना के बाद। वहीं इधर फारस की खाड़ी में भी खतरा बढ़ा, कतर के पास मालवाहक जहाज पर हमला हुआ, समुद्री सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इजराइल और लेबनान के हमलों में भी 39 लोगों की मौत हो गई। लेबनान में ये इजरायली हमलों से जाने गई जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इमारत में हिजबुल्ला आतंकवादियों पर भी हमला देखने को मिला। तो ये तो जंग के हालात चल रहे हैं। और कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। खबर आ रही है अमेरिका के H-1B वीजा कर्मचारियों का बढ़ेगा न्यूनतम वेतन, अमेरिका ने 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। और पाकिस्तान में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, पुलिस चौकी पर इस तरह के हमले में 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। और बांग्लादेश हाईकोर्ट ने हिंदू साधु चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज की, हत्या के मामले में इन पर ट्रायल जारी है। वहीं भारत के विदेश मंत्री अभी त्रिनिदाद के दौरे पर हैं। इस दरमियान भारत, त्रिनिदाद एवं टोबेगो के बीच एक अहम समझौता हुआ। हुआ। एस जयशंकर बोले कि अपने पूर्वजों की जड़ें ढूंढ सकेंगे प्रवासी, क्या समझौता हुआ देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल्स भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में सतर्कता शिकायतों के लिए सीपीसीबी ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार रोकने पर खास जोर दिया जाएगा। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है भ्रष्टाचार फर्जीवाड़े पर लगाम लगाना। इस गाइडलाइन में क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं देख सकते हैं आप जानकारी। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, बारिश के दौर के बीच कई राज्यों में गर्मी भी बढ़ने लगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में फिर से गर्मी लौटी। चार शहरों में तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। राजस्थान का बाड़मेर देश में सबसे गर्म जिला चल रहा अभी, जिसका तापमान 45.5 डिग्री से भी ऊपर चल रहा। रात में भी लू चल रही है यहां तो। हालांकि बीते दिन मध्य प्रदेश समेत चार राज्यों में बारिश भी हुई, बिहार में भी ओले गिरे, राजस्थान में आंधी से एक शख्स की मौत भी हो गई। वहीं मौसम विभाग का कहना कि दिल्ली NCR में मौसम फिर से करवट लेगा। अब आज से अगले दो दिन राजधानी दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट है। 11-12 मई को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते बारिश देखने को मिलेगी। कुछ और अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में हीट वेव के साथ आंधी बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। सूरत का पारा फिर से बढ़ने लगा। बाड़मेर, जैसलमेर में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में अब फिर से लू चलेगी, आंधी बारिश का दौर थमेगा। रतलाम में तापमान 44 डिग्री पहुंचा। बात करें बिहार की तो राजधानी पटना समेत 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। तेज आंधी की भी चेतावनी। बिहार के कटिहार में बारिश हुई, नालंदा, शेखपुरा में भी ओले गिरे। वैसे बिहार के किन 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है ये देख सकते हैं आप मानचित्र में, मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन अलर्ट भी। वैसे बिहार से एक खबर आ रही कि मॉडल हीट एक्शन प्लान विकसित करने वाला देश का पहला जिला बन चुका है बिहार का पटना। हीट वेव जोखिमों से निपटने की प्रशासन की नई तैयारी है। और छत्तीसगढ़ में देखिए, आज भी आंधी बारिश का अलर्ट। बदल सकता है मौसम का मिजाज, अगले दो दिन यही हालात रहेंगे, उसके बाद फिर गर्मी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में भी दो दिन बाद फिर बिगड़ेगा मौसम, 12 मई से आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। और झारखंड में देखिए, बीते दिन आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। आज भी आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट है। ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। हरियाणा में भी आज रात से आंधी चलेगी। 7 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। और पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज से फिर बदलेगा मौसम, धूल भरी आंधी के साथ बारिश की चेतावनी है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में भी अब अगले 5 दिन मौसम खराब रहेगा। आज से बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। इधर उत्तराखंड में भी 5 पहाड़ी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी हुई। मैदानी इलाकों में 4 डिग्री तक तापमान बढ़ेगा। और उत्तराखंड में तो चारधाम यात्रा पर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया, कहा कि 12 और 13 मई को विशेष सावधानी बरतें श्रद्धालु। बाकी अगले दो दिन, आज और कल, 11 और 12 मई को मौसम का हाल क्या रहेगा देश भर में अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो अब बारिश का दौर जारी है, लेकिन इसके साथ ही कई राज्यों में तापमान फिर से बढ़ने लगा है। ये भारत के मानचित्र में डेटा भी आप देख सकते हैं। अच्छा वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है, मतलब भारी गर्मी पड़ रही है, बारिश वगैरह का माहौल है आपके राज्य और जिले का, नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इस सप्ताह ईरान अमेरिका तनाव पर होगी शेयर बाजार में निवेशकों की नजर। चौथी तिमाही के नतीजों समेत 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाजार की आगे की चाल तय करेंगे। हालांकि विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से इस महीने मई में ही 14,231 करोड़ रुपए निकाले हैं। इसी साल 2026 में अब तक 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली हो चुकी है FII विदेशी निवेशकों की। और यही वजह है कि पिछले सप्ताह भी देखिए, भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 4 की वैल्यू 1,00,000 करोड़ रुपए तक घटी है, जिसमें SBI टॉप लूजर रहा। और खबर देखिए, अमेरिका में एक भारतीय मूल के अनिल कोचर ने दिखाया बड़ा दिल। 176 छात्रों का एजुकेशन लोन चुका दिया इन्होंने। आखिर दिल जो भारतीय है इनका, ऐसे भारतीय दिलदार शख्स को वाकई में दिल से सैल्यूट। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, देखिए आप अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स समिट में दिखेगा भारत का दबदबा। अमेरिका के साथ कारोबार में बातचीत आगे बढ़ाना प्राथमिक मुद्दा होगा भारत का। इसी महीने अगले सप्ताह 14-15 मई को ब्रिक्स समिट होने वाला है भारत में। भारत इस बार इस समिट की अध्यक्षता कर रहा है ना। वहीं देखिए, नेपाल में भी एक नया कानून लागू हो चुका है। अब बिना आईडी नेपाल में भारतीयों को एंट्री नहीं मिलेगी। बालेन सरकार ने भारतीय लोगों के लिए यह नया नियम लागू किया है। और इसके अलावा नेपाल में भारतीय वाहनों के लिए भी नए नियम लागू हो चुके हैं। साल में सिर्फ 30 दिन की ही अनुमति होगी भारतीय गाड़ियों को नेपाल में रुकने की। और रेल पर पथराव की एक बड़ी घटना देखिए, बीते दिन उत्तर प्रदेश के कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों पर पथराव हुआ। शीशे टूटे, यात्रियों ने गेट बंद कर कोच में बचाव किया। चलिए अगली खबर देखिए। अब एक ही कार्ड से कर सकेंगे पूरे देश में बस और मेट्रो का सफर। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से रुपे ऑन द गो कार्ड लॉन्च किया गया है, जिससे राजधानी वासियों को ये नई सुविधा मिलेगी। इस NCMC स्मार्ट कार्ड की मदद से एक ही कार्ड से अब आप मेट्रो बस समेत कई सेवाओं के लिए भुगतान करवाएंगे। DMRC का कहना कि अगले 10 दिनों में ये कार्ड सभी मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध हो जाएगा। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए। भारत के जखीरे में जल्द ही शामिल होगी अजय हाइपरसोनिक मिसाइलें। DRDO ने क्रेम जेट इंजन का भी सफल परीक्षण कर लिया है। ध्वनि से भी 5 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में भारत ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए। आपका सर्च करने का तरीका बदलने जा रहा, गूगल 5 नए AI फीचर्स ला रहा है। अब काम की जानकारी ऑनलाइन ढूंढना और भी आसान होगा। गूगल अपने AI टूल्स यानी AI ओवरव्यूज और AI मोड को अपडेट करते हुए 5 नए फीचर्स पेश किए हैं। यूजर्स अब एक्सपर्ट सलाह भी ले पाएंगे। आप गूगल सर्च करते दौरान अपने पसंदीदा सोर्स को आसानी से देख पाएंगे। लिंक प्रीव्यू भी मिलेगा और पसंद के हिसाब से आपको सुझाव सजेशन भी मिलेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में उद्योगों को मिलेगी नई रफ्तार, 11 जगहों पर बनेगी सैटेलाइट सिटी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। 2025 से 2030 तक बिहार सरकार का यह प्लान जो था, इसके तहत ये 11 सिटी विकसित की जाएगी ऐसा। और खबर है उड़ीसा पुलिस का सुपर एक्टिव मोड शुरू होने जा रहा। अब हर सुबह 9 बजे थानों में होगी ब्रीफिंग परेड। DGP की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए हैं उड़ीसा के पुलिस कर्मियों के लिए। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत में पाकिस्तान का पंखा चलता हुआ मिला मदरसे में। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ, सामने आया तीसरे देश का कनेक्शन। मामला UP के कुशीनगर जिले का है, देख सकते हैं आप। और बीते दिन हरियाणा के निकाय चुनाव संपन्न हुए। 54.7% मतदान हुआ। 13 मई को इनके परिणाम आएंगे। एक जगह फर्जी वोट डालता हुआ भी पकड़ा गया युवक। वहीं देश में चल रहे LPG गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच नए घरेलू गैस कनेक्शन देने पर रोक लगाई गई है। सिर्फ पुराने कनेक्शन ही ट्रांसफर हो सकेंगे, ये भी नया आदेश जारी हो चुका है। और वहीं देखिए, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी संभालते ही विजय ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद कहा और राज्य के विकास के लिए सहयोग भी मांगा। चलिए खबर देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर मेट्रो के फेज 2 को मिली रफ्तार। 41 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो लाइन से बदलेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी। इस नए 13,500 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं खबर है, राजस्थान में शिक्षकों का कहना कि अब आर पार की लड़ाई होगी। राजस्थान के टीचर्स एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। 18 जून से अगले महीने प्रदेश भर में धरना देने की भी चेतावनी दी है। अपनी कुछ मांगों को लेकर शिक्षकों की तरफ से ये आंदोलन की चेतावनी दी गई है। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री होगी फिल्म कृष्णावतारम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की। CM और राज्यपाल ने एक साथ मिलकर फिल्म भी देखी। वहीं देखिए, हरियाणा में फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली। घोषणा विलेख में देरी करने वाले बिल्डरों पर कसा जाएगा कानूनी शिकंजा भी। 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया हरियाणा सरकार ने इस तरह के मामलों में। और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ा मौका है। फ्री ट्रेनिंग मिलेगी, रहने खाने की सुविधा और नौकरी भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से नई योजना शुरू की गई है, जिससे युवाओं को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। वहीं खबर है, 6 दिन 2610 किलोमीटर और शाही सफर। राजस्थान के इलाके में स्थित मशहूर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का शेड्यूल बदल चुका है। 45 साल में पहली बार मई में भी ये ट्रेन चलने जा रही है, देख सकते हैं आप जानकारी। और PM नरेंद्र मोदी 10-11 मई को कर्नाटक और तेलंगाना दौरे के दौरान हैदराबाद को 9,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन 3 राज्यों में न्यूनतम वेतन में सबसे ज्यादा असमानता देखी गई है। SBI की तरफ से श्रमिकों के वेतन को लेकर ये रिपोर्ट जारी की गई। और खबर देखिए, जम्मू लद्दाख में दुर्गम स्थानों में भारतीय सेना ने दिखाया बड़ा दिल। लोगों को बांटे सोलर लाइट किट, जिससे कई घर और सड़कें भी रोशन हुई। जहां आज दिन तक लाइट यानी बिजली नहीं पहुंच पाई, वहाँ ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना की तरफ से यह नई पहल की गई है। और हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर को लेकर चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की। कर्मचारियों के फाइल भेजने पर भी रोक लगाई गई। 31 मई तक ये निर्देश जारी किया है। वहीं बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को वेतन के बदले मिलेगा ब्याज मुक्त अग्रिम राशि भी है। बिहार की सम्राट सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए और भी क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इस बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, राजधानी दिल्ली वालों को जल भराव से मुक्ति मिलेगी। 20.25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा रिलीफ ड्रेन। करावल नगर के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सरकार की तरफ से यह नया प्लान है। और बिहार में विजिलेंस कैडर भी खत्म हुआ, अब सभी अफसर स्टेट पुलिस में शामिल होंगे। राज्य सरकार की तरफ से यह भी नया आदेश जारी किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में TB के 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 42% एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB केस ने चिंता भी बढ़ाई है। हालिया सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और हरियाणा में लोगों की मौतों को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप, रोजाना 9 मौत हो रही है, एक साल में 3360 तो इस तरह के मामले देखने को मिले जिनमें लोगों ने खुद की जीवन लीला अपने आप ही समाप्त कर ली। रणदीप सुरजेवाला ने NCERB के आंकड़ों पर भी चिंता जताई। और राजधानी दिल्ली में अनाथ युवाओं को मिलेगा सरकार का साथ, शिक्षा और रोजगार समेत कई नई सुविधाएं भी दी जाएगी। जी हां, दिल्ली सरकार 18 साल की आयु पूरी करने वाले अनाथ और बाल संरक्षण गृहों से बाहर आने वाले युवाओं के लिए ये नई योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 3.5 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया गया, तो ये फायदा मिलेगा। वहीं बिहार में परिवहन विभाग बनेगा रोजगार का बड़ा जरिया, मेन सड़कों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन भी। बिहार के परिवहन मंत्री राउत की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और भारत अफ्रीका समिट पर एक अपडेट आ रहा, 28 मई से दिल्ली में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, G20 जैसी तैयारियां की जाएगी, सड़कें और होटल भी चकाचक किए गए हैं। 28 मई से लेकर 1 जून तक ये भारत मंडपम में 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए, दिल्ली NCR में मिर्गी मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, दिल्ली एम्स में महंगे टेस्ट अब फ्री होंगे, मरीजों को कई नई सुविधाएं भी मिलेगी। जो एपिलेप्सी मिर्गी की बीमारी है उसके मरीजों के लिए राहत की खबर है। और खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो चुकी है, सोलन पहुंची 25 नई बसें, जल्द ही इनका परिचालन भी शुरू होगा। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल 2.0 का विस्तार हुआ, 8 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है। वैसे तो टोटल 6 नए मंत्री बने योगी मंत्रिमंडल में, 2 का प्रमोशन हुआ। शपथ के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पेट छुए, कृष्णा पासवान ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही अब यूपी में टोटल 60 हो चुकी है योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या, चुनाव के 1 साल पहले ये विस्तार किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन होगा, पहली बार बच्चे बच्ची सांकेतिक भाषा भी सीखेंगे। 13 से 19 मई तक ये अभियान चलेगा यूपी में। उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में भाषा संगम अभियान शुरू होने जा रहा, योगी सरकार सिखाएगी भारतीय भाषाओं का हुनर और सांकेतिक संवाद भी। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में भी साप्ताहिक बाजारों के लिए नई व्यवस्था लागू हुई, लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, ये नया प्लान है नोएडा प्राधिकरण का। और टेक न्यूज से खबर देखिए, छोटे कारोबारियों के लिए फोन पे कंपनी ने नया AI फीचर लॉन्च किया है, जिसकी मदद से मर्चेंट्स कुछ ही मिनट में अपने पेमेंट गेटवे को जोड़ पाएंगे। और नौकरी करने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है, आज से पूरी तरह लागू हो चुके हैं 4 नए लेबर कोड्स, जो 29 पुराने श्रम कानून थे उनको केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और ये 4 नए लेबर कोड्स में क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देश के श्रमिकों को, मजदूरों को, वैसे तो इस बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले भी बताई हुई है, बाकी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में भी अब AI का इस्तेमाल होगा, प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया स्मार्ट कंप्लायंस टूल। एक्सिस बैंक ने करंट अकाउंट ग्राहकों के लिए नया AI टूल लॉन्च किया, जिसकी मदद से उनको ये नई फैसिलिटी मिलेगी। और बिहार में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, 16 IPS और 11 IAS अफसरों का तबादला किया गया, कुमार रवि बने स्वास्थ्य विभाग के सचिव भी। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर में हरिद्वार समर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन आज से शुरू होने जा रही है। और बिहार में तेजस्वी यादव बिहार यात्रा से संगठन को धार देंगे, पटना से निकलकर सभी जिलों में पहुंचेगा मिशन 2026। वहीं बिहार पटना मेट्रो का पहला इंटरचेंज स्टेशन अगस्त में शुरू होगा। और बिहार सरकार का कहना कि राज्य तभी मजबूत बनेगा जब व्यापार और उद्योग मजबूत होगा। वहीं चंडीगढ़ को भी 328 इलेक्ट्रिक बसें मिलने का रास्ता साफ हुआ, केंद्र सरकार ने टेंडर भी लगाया। और पंजाब में देखिए, दिल्ली लुधियाना की पहली फ्लाइट 15 मई को उड़ान भरेगी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी 16 शहरों से जुड़ चुका है, 1 जुलाई से नोएडा के लिए भी 2 नई फ्लाइट शुरू होगी यहां से। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में कृषि विज्ञान भर्ती परीक्षा 2022 पेपर लीक का बड़ा खुलासा हुआ, पूर्व RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जांच में पता चला कि 8 लाख में इन्होंने पेपर बेचा था। देखिए, ये बड़े बड़े लेवल के अधिकारी किस तरह से स्टूडेंट के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यार। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में 6200 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी स्थगित हो सकती है, निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग को ये पत्र भी भेजा है। और बीते दिन हिमाचल बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया, कांगड़ा की अनमोल बनी स्टेट टॉपर, 700 में से सिर्फ 1 अंक कम रहा, 699 अंक मिले इन्हें। इनका कहना कि रोजाना घर में 6 घंटे पढ़ाई की इन्होंने, मैंने मेरी कांग्रेस दी हिमाचल स्टेट टॉपर अनमोल को। वहीं हरियाणा लोक सेवा आयोग ने SC ST PGT के एडमिट कार्ड आज जारी करने का ऐलान किया, 17 मई को ये परीक्षा होगी। और उत्तराखंड के 200 सरकारी स्कूलों में प्रोफेशनल कोर्स बंद हुए, 20,000 बच्चे अधर में चल रहे हैं अभी। और बिहार में साइबर ट्रेजरी के लिए 23 पदों पर जल्द ही नियुक्ति होगी। ओके, और एजुकेशन अपडेट के बाद कुछ खेल समाचार से जुड़ी खबरें देखिए आप। IPL में मुंबई आखिरी बॉल पर हारी, प्ले ऑफ रेस से बाहर हुई, बेंगलुरु 2 विकेट से जीती, कुणाल ने भी 73 रन बनाए, भुवनेश्वर को 4 विकेट मिले हैं। वैसे IPL में लखनऊ भी प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, चेन्नई ने 5 विकेट से हराया। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी डील में फायदा मिलेगा, मिथुन राशि वालों को भी बिजनेस में अच्छी खबर, और मीन राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों,
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो ID नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।